पृष्ठ संख्या 129, अध्याय 9, मूल्यांकन। गांधी ने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए अर्पित कर दिया। रामधारी सिंह दिनकर ने ठीक ही लिखा है, गांधी के अहिंसा के प्रयोग पर एक समय सारा संसार हंसता था और बड़े बड़े लोग शंका से यह कहकर सिर हिलाया करते थे कि इतिहास में कभी भी अहिंसक क्रांति नहीं हुई। किंतु अहिंसा में जो शक्ति छिपी थी उसे केवल गांधी की दृष्टि देख सकती थी, जिसका व्यवहारिक प्रयोग गांधी ने कर दिखाया। राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी के योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। यही कारण है कि राष्ट्र ने गांधी को राष्ट्रपिता की संज्ञा से विभूषित किया। गांधी महान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मनीषी थे, किंतु गांधी के सत्याग्रह को एक सिद्धांत के रूप में एवं उसकी व्यवहारिकता को लेकर समय समय पर विभिन्न विद्वानों की विभिन्न प्रतिक्रियाएं रही हैं। कुछ लोगों ने उन्हें महात्मा की उपाधि से विभूषित किया है, तो कुछ ने उन्हें एक जिद्दी राजनीतिज्ञ कहकर भी पुकारा है। गांधी के प्रशंसकों के अनुसार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार, जुल्म और अन्याय के विरुद्ध गांधी ने सफलतापूर्वक सत्याग्रह किया। मतभेदों को कम करने की दिशा में अहिंसक प्रेम और भाईचारे को बढ़ाकर केवल भौतिक सुखों को अपर्याप्त मानकर संसार में अस्थायी एकता लाने में गांधी ने जितना प्रयास किया उतना किसी और ने नहीं किया। उन्होंने सारे संसार में इस संदेश को फैलाने का प्रयत्न किया। उपाय तो आज भी उनके बताए हुए हमारे पास पड़े हैं। पृष्ठ संख्या 130। सबसे पहला उपाय तो उन्होंने आपस में और दूसरों से प्रेम का बताया। विरोध करना पड़े तो अभी प्रेम से करें। यह उपाय अपने जीवन में पहले उतारा जाए, ताकि जब हम इसकी बात करें तो वह सुनने वाले को मुंह की बात न लगे, हृदय की गहराई से आई हुई लगे। सारा संसार आज हिंसा और द्वेष की निरर्थकता को समझ चुका है। चारों ओर शांति और निःशस्त्रीकरण की बातें चलती हैं, शोषण को समाप्त करने की बातें चलती हैं, मगर काम विपरीत किए जाते हैं। दोहन सिर्फ आदमी का नहीं, नदी, सागर, पर्वत, वन, आकाश, पाताल का, समस्त ब्रह्मांड का चलता है। यह हार्दिक या मानसिक कार्यक्रम है गांधी का। विज्ञान को अगर विनोबा भावे के शब्दों में आध्यात्मिकता से जोड़ें तो बड़ी आसानी से जरूरत की उत्तम चीज़ें बनाई जा सकती हैं। मनुष्य जो आज बेकार की भाग दौड़ में लगा हुआ है, वह यदि समय का सदुपयोग करे तो अपने गुणों का विकास कर सकता है। आज की निष्क्रियता से उत्पन्न थकान के बदले सार्थक संस्कृति, कला, साहित्य आदि की सृष्टि करके जीवन में अधिक आनंद उठाया जा सकता है। विनोबा ने कहा, हम गांधी के विचारों के अनुसार चलकर देश को सच्चे अर्थों में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना सकते हैं, जहां एक ओर सभी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, वहीं सभी लोगों का जनकल्याण भी होगा। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद वर्मा के अनुसार, गांधी ने आत्मा की शांति तथा व्यक्तित्व का एक ऐसा एकत्व उपलब्ध कर लिया था, जैसे थोड़े से धन्य पुरुषों के भाग में हुआ करता है। उनके समग्र जीवन में जो पूर्ण निश्चलता और ईमानदारी के कार्यों से संकुल था, सशक्त आध्यात्मिक एकता व्याप्त थी। इसी कारण वे एक पैगंबर, संदेश वाहक बन गए। गांधी का संदेश था कि असार्वजनिक, अहिंसक और आध्यात्मिक जीवन का साक्षात्कार करके संवेगों की एकता तथा व्यक्तित्व का अंतः सामंजस्य प्राप्त करना ही इन सब रोगों का एकमात्र उपचार है। गांधी का जीवन भागवत गीता तथा मानव जाति के अन्य धर्म शास्त्रों के इस महान सत्य की अभिव्यक्ति है, पुष्टिकरण है कि सत्य का एक कण असत्य के पर्वत से भी अधिक शक्तिशाली होता है। सत्य तथा अहिंसा के प्रति गांधी की भक्ति आश्चर्यजनक थी। उनकी आत्म बलिदान की भावना इससे व्यक्त होती है कि उन्होंने बंगाल की नोआखली तथा बिहार के दंगों से प्रभावित क्षेत्रों में अकेले ही यात्रा की थी। गांधी के लिए स्वतंत्रता एक समग्र वस्तु थी। वासनाओं की दासता से मुक्ति के रूप में नैतिक स्वतंत्रता, विदेशी शासकों तथा शोषकों के बंधनों से मुक्ति के रूप में राष्ट्रीय स्वतंत्रता और मोक्ष तथा सत्य के साक्षात्कार के रूप में आध्यात्मिक स्वतंत्रता, ये सब स्वतंत्रता के विभिन्न रूप थे। पृष्ठ संख्या 131। गांधी संत तथा नैतिक क्रांतिकारी थे। उनका विश्वास था कि कि हिंसा सामाजिक व्यवस्था की वास्तविक क्रांति में विघ्न डालती है। सत्याग्रह सामाजिक आदर्शों में क्रांति ला सकता है। गांधी का विश्वास था कि हिंसा मानव जाति को सत्यानाश के गर्त में पटक देगी। वो मानते थे हमारी समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान संभव है। गांधी ने सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और सामाजिक न्याय का पाठ पढ़ाकर एशिया की युगों पुरानी बुद्धिमत्ता की सार्थकता को सिद्ध कर दी। यदि सभ्यता के सर्वविनाश को रोकना है तो हमें उनके शिक्षाओं की ओर ध्यान देना होगा। यह सत्य है कि 1946-47 बंगाल, बिहार और पंजाब में भयंकर पैमाने पर जो सांप्रदायिक नरसंहार हुआ, उससे लगा कि भारत ने गांधी की शिक्षाओं को हृदय से अंगीकार नहीं किया था। भारतवासियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसात्मक प्रतिशोध का मार्ग इसलिए स्वीकार कर लिया था कि अंग्रेजों की शक्ति के सामने वे विवश थे। उन्होंने दीर्घ की अहिंसा को नहीं अपनाया था। आचार्य जेबी कृपलानी ने अपनी पुस्तक गांधी एक राजनैतिक अध्ययन में जोर देकर यह बात कही है कि यदि गांधी सामाजिक क्षेत्र में क्रांतिकारी, सत्याग्रही न होते तो उनके सारे नैतिक गुण धरे ही रह जाते तथा भारतीय राजनीति और उसकी स्वतंत्रता पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भारत में उस समय कितने ही संत थे और आज भी हैं जिनकी आध्यात्मिक महत्ता गांधी जी से किसी तरह कम नहीं, फिर भी देश की राजनीति और समाज पर उनका कोई प्रभाव नहीं। इसे मैं अच्छा नहीं समझता। अतः इस स्थिति में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है, पर यह क्रांति भी किसी सामाजिक क्रांतिकारी के हाथों ही होगी, न कि किसी संत के। गांधी का मत था कि आम जनता के नैतिक और आत्मिक विकास के लिए उपयुक्त बाह्य उपकरणों की जितनी ही आवश्यकता है जितनी स्वस्थ शरीर की। गांधी का उद्देश्य अध्यात्म में रुचि रखने वाले कतिपय लोगों की सेवा मात्र ही न थी, बल्कि उनका उद्देश्य था सुंदर जीवन व्यतीत करने के लिए मानव मात्र का नैतिक स्तर ऊंचा उठाया जाए। यह कार्य समता और न्याय के आधार पर बने समाज में ही संभव है। उनका कथन था कि नैतिक गुण शून्य में नहीं रहते, बल्कि संपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों में उनका समावेश संभव है। पृष्ठ संख्या 132। अतः समाज का उनका परिचय होना तथा उसके लिए समाज का सुधार होना आवश्यक है, ताकि ये नैतिक गुण समाज में भी प्रतिबिंबित हो सके। आचार्य कृपलानी ने कहा है कि विश्व के इतिहास में सत्य और अहिंसा की यह कोई नई दृष्टि नहीं है। ईसा, बुद्ध और दूसरे बहुत से नए पुराने महात्माओं ने इनका प्रचार किया था, किंतु नई बात तो यह है कि गांधी ने इन गुणों को जनमानस तक पहुंचाया और राष्ट्रीय आंदोलन में उनका सफलतापूर्वक प्रयोग किया। भारत और विश्व के इतिहास में सत्याग्रह, सत्य और अहिंसा का सामूहिक और राजनैतिक व्यवहार अभूतपूर्व है और यह सदा स्वर्ण अक्षरों में चमकता रहेगा। नानाजी देशमुख का कहना है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी के सत्याग्रह का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि गांधी ने सत्याग्रह के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन का रूप दिया। गांधी से पूर्व किसी नेता ने जन आंदोलन के लिए काम नहीं किया था। नाना जी का यह विचार है कि आज़ादी प्राप्त करने के दो साधन थे, पहला साधन खूनी संघर्ष के माध्यम से तथा दूसरा साधन शांतिपूर्ण अहिंसात्मक ढंग से सत्याग्रह करके आज़ादी को प्राप्त करना। पहला साधन भारत को आज़ादी दिलाने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं था, क्योंकि भारतीयों के पास आधुनिक अस्त्र शस्त्र नहीं थे जो ब्रिटेन के पास थे। कुछ आतंकवादी नेताओं ने हिंसात्मक तरीके अपनाए और वे असफल रहे। उन्हें हथियारों एवं गोला बारूदों के लिए यूरोपीय देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। ब्रिटिश सरकार ने हथियारों को लेकर चलने पर पाबंदी लगा रखी थी। इस प्रकार भारत को आज़ादी दिलाने में हिंसात्मक मार्ग संभव ही नहीं बल्कि पूर्ण कठिन भी था। यदि हिंसात्मक मार्ग चुना भी जाता तो इसे पूर्ण रूप से ब्रिटिश सरकार दबाने में सक्षम थी, साथ ही जान माल की बड़े पैमाने पर बर्बादी होती। ऐसे समय में गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन की नब्ज को पहचाना और उन्होंने आज़ादी प्राप्त करने के लिए शांतिपूर्ण अहिंसात्मक सत्याग्रह का मार्ग चुना, जिसमें गांधी को सफलता भी मिली। गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान समय समय पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। नानाजी ने बताया कि सत्याग्रह वस्तुतः आज़ादी प्राप्त करने के लिए था। सत्याग्रह का अर्थ वस्तुतः ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध छेड़ा गया आंदोलन था, जिसमें ब्रिटिश सरकार से असहयोग करना था। आज़ादी प्राप्त करने के बाद देश का आर्थिक विकास करना है, देश का नवनिर्माण करना है, न कि सत्याग्रह। नानाजी देशमुख का कहना है कि आज जो लोग सत्याग्रह करते हैं वे देश के विकास के मार्ग को अवरुद्ध करते हैं। पृष्ठ संख्या 133। अतः आज लोग नासमझी के कारण सत्याग्रह करते हैं। ऐसी बात नहीं कि वे सत्याग्रह सत्य और अहिंसा को नहीं समझते। सत्याग्रह का प्रयोग समाज कल्याण के लिए नहीं, बल्कि भोले भाले लोगों को भ्रम में डालकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने विचार से करते हैं। गांधी ने देश की राजनीति और आर्थिक स्थिति का गहराई से अध्ययन किया था। वह यह जानते थे कि किन परिस्थितियों में कौन सा कदम उठाना चाहिए। उनमें यदि यह निर्णायक योग्यता न होती तो देश के सामाजिक जीवन में अपने नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों के इतने क्रांतिकारी और सफल प्रयोग वे कर ही न पाते। गांधी के नैतिक और आध्यात्मिक गुणों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को मानवता के हितों से जोड़ दिया था। गांधी में इतनी क्षमता थी कि वे क्रांतिकारी अवसरों को सही सही पहचान लेते थे और तद अनुकूल ही कार्य करते थे। उनकी अहिंसा की शैली ने ऐसी बहुत सी कठिनाइयों से बचा लिया था जो कि रक्त रंजित क्रांतियों के कारण उठानी पड़ती। सत्याग्रह पद्धति की विकास करने में गांधी की मौलिकता निर्विवाद है। साथ ही उसे आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो कार्य किए हैं वे महत्वपूर्ण हैं। गांधी का जीवन ऐसा पाठ सिखाता है कि सामाजिक शक्ति के रूप में सत्याग्रह का उपयोग किस प्रकार किया जाए। अहिंसक सत्याग्रह को सामाजिक शक्ति का रूप देकर स्वतंत्रता और स्व अधिकार की लड़ाई के लिए उन्होंने नया एवं शक्तिशाली हथियार मानवता को दिया है। जनता गांधी की बातों को बुद्धि की कसौटी पर ग्रहण करने से पूर्व ही उनके व्यक्तित्व के जादू से बंध जाती थी। गांधी संसार के प्रति निष्काम भाव रखते हुए भी एक सच्चे कर्मयोगी थे। उनके जीवन दर्शन का मूल आधार निष्काम कर्म था। गांधी ने सत्याग्रह का अचूक हथियार मानव जाति को दिया, जिसके बल पर वह बड़े बड़े अन्यायों, विषमताओं और हुकूमतों का मुकाबला कर सीना तान कर आगे बढ़ सकता है। सत्याग्रह में तीन तत्व एक साथ शामिल हैं: अत्याचार के खिलाफ बगावत, जन कल्याण के लिए कार्य और अंदर अंदर सत्य की विजय। गांधी के अहिंसा एवं सत्याग्रह के सिद्धांत में विश्वास न रखने वाले विचारक। कुछ विचारकों ने गांधी के अहिंसा एवं सत्याग्रह के सिद्धांत को भारतीय संघर्ष में न केवल अप्रासंगिक बताया है, बल्कि उनकी आलोचना भी की है। पृष्ठ संख्या 134। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार आज़ादी प्राप्त करने के लिए गांधी के सत्याग्रह का हथियार न काफी है, किंतु आम जनता का सत्याग्रह हो तो उसका स्वागत किया जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी का कहना था कि राष्ट्रीय आंदोलन सत्याग्रह द्वारा क्रांतिकारी परिणाम तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए कम्युनिस्ट उसे अस्वीकार करते हैं। किंतु अब मजदूरों, किसानों और छात्रों की संगठित शक्ति इतनी जबरदस्त है कि वे अपनी स्वतंत्र कार्रवाई के लिए आम जनता के सत्याग्रह को आम जनता का क्रांतिकारी आंदोलन बना सकते हैं। इसलिए आम जनता के सत्याग्रह का विरोध करना तो दूर, कम्युनिस्ट इस बात की कोशिश करेंगे कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो जिसमें कांग्रेस को जनसंघर्ष का आह्वान करना पड़े, भले ही वह सत्याग्रह के रूप में हो। कम्युनिस्ट नेतृत्व का विचार था देशव्यापी सत्याग्रह का आह्वान कांग्रेस करे, तभी बड़े पैमाने पर सत्याग्रह होगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक या संयुक्त वाम पंक्ष भी ऐसे सत्याग्रह का नारा लगाए तो आम जनता उसमें हिस्सा न लेगी, क्योंकि वह दक्षिण पंथियों के प्रभाव में है। इसलिए ऐसे सत्याग्रह का क्रांतिकारी विकास न होगा। और कम्युनिस्ट वैसे आह्वान का विरोध करेंगे। जब कांग्रेस जन सत्याग्रह शुरू करेगी तब कम्युनिस्ट उसमें सक्रिय रूप से भाग लेंगे। सारी शक्तियों से जो भी टक्कर होगी उसमें वे आगे बढ़कर हिस्सा लेंगे। प्रचार द्वारा और आम हड़तालों के वास्तविक विकास द्वारा कांग्रेस प्रभावित जनता को दिखाएंगे कि संघर्ष का सर्वहारा तरीका किस तरह ज़्यादा कारगर होता है, और इस तरह उसे वह अपने पक्ष में करने का प्रयास करेंगे। गांधीवाद की सख्त आलोचना करते हुए पार्टी नेतृत्व ने लिखा है कि वह साम्राज्यवाद को क्रांतिकारी शक्तियों का अलगाव करने और उनका नाश करने का अवसर देता है। वह सत्याग्रही के कर्तव्य के बारे में शब्दजाल द्वारा अपनी कायरता और दिवालियापन छिपाता है। वह खुलकर राजनीतिक हड़तालों का विरोध करता है, जन सत्याग्रह का भी विरोध करता है। वह रियासतों के मामले में, युद्ध के मामलों में, ऑर्डिनेंसों के मामलों में साम्राज्यवाद के सामने घुटने टेकता है। इसके साथ ही संघर्ष की शक्तियों के खिलाफ डटकर अभियान चलाता है। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के बाद गांधीवाद ने अपने अंतिम और सबसे प्रतिक्रियावादी दौर में प्रवेश किया है। उसकी अब कोई भी प्रगतिशील भूमिका नहीं रह गई। वह एकता कायम नहीं रख सकता। राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर इस समय वह विघटन फैलाने वाली संघर्ष विरोधी शक्ति है। युद्ध के मामले में समझौता इस समय यह गांधीवाद का सार तत्व है। अपनी नीति को लागू करने का कौशल है गतिरोध, निष्क्रियता। इसलिए गतिरोध और समझौते के खिलाफ संघर्ष का मतलब है गांधीवाद से संघर्ष। पृष्ठ संख्या 135। गांधीवाद को ललकारते हुए पार्टी के नेतृत्व ने कहा, गांधी जी के नेतृत्व में आस्था की घोषणा करने के बदले जमकर उसका पर्दाफाश करना चाहिए। नीति यह न होगी कि गांधीवादी नेतृत्व को समझा बुझा कर या धक्का देकर संघर्ष में लाया जाए। नीति यह होगी कि उसका अलगाव किया जाए और आम जनता पर उसके प्रभाव को समाप्त किया जाए। उसके अहिंसावादी नकाब को उतार कर फेंकना चाहिए और बताना चाहिए कि वह समझौतावादी पूंजीपति वर्ग की नीति है। रजनी पाम दत्त के अनुसार गांधी द्वारा शुरू किए गए सत्याग्रह से राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। अब कांग्रेस एक ऐसी राजनीतिक पार्टी बन गई थी जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जन संघर्ष का नेतृत्व करने को उठ खड़ी हुई थी। नए कार्यक्रम और नई नीति में एक अन्य तत्व भी था जो जन संघर्ष से अपरिचित था। यह तत्व था निम्न पूंजीवादी नैतिकतापूर्ण निराधार चिंतन तथा सुधारवादी शांतिवाद का, जिसकी अभिव्यक्ति बड़े मासूम लगने वाले शब्द अहिंसा से हुई। गांधी ने इस शब्द का इस्तेमाल समूची धार्मिक एवं दार्शनिक अवधारणा को व्यक्त करने के लिए किया। उन्होंने इस विचारधारा का प्रचार प्रसार बड़ी वाक्पटुता और निष्ठा के साथ किया। गांधी की विचारधारा कुछ मामलों में भारत की पुरानी निराधार चिंतन धारा जैसी थी, पर उनका घनिष्ठ संबंध टॉलस्टॉय, थोरो और इमर्सन जैसे पश्चिम के आधुनिक विचारकों के चिंतन के साथ था। गांधी की विचारधारा के निर्माण में इन विचारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। गांधी के उन अनेक अवधारणाओं से सहमत नहीं थे। इसका कारण यह था कि उन्होंने सोचा कि दुश्मन के रूप में एक शक्तिशाली सशस्त्र शासक वर्ग में निहत्थी जनता की लड़ाई शुरू कराने के लिए अहिंसा के इस हथियार का सहारा लिया जा सकता है। लेकिन बाद की घटनाओं के अनुभव और अहिंसा शब्द की नित नई व्याख्याओं से यह स्पष्ट हो गया कि वस्तुतः ऊपर से यह सब बहुत निर्दोष, मानवीय और उपयोगी लगता है, पर इसके पीछे न केवल अंतिम संघर्ष को नकारने की बात छिपी है, बल्कि तत्कालिक संघर्ष को रोकने की भी बात छिपी है। क्योंकि हमेशा आम जनता के हितों को बड़े बुर्जुआ वर्ग और जमींदार वर्ग के हितों के साथ जोड़ने की कोशिश की गई। भारत का बड़ा पूंजीपति वर्ग और जमींदार वर्ग निश्चय ही किसी भी निर्णायक जन संघर्ष के खिलाफ था। पृष्ठ संख्या 136। यही वह अंतर विरोध था जिसके कारण अपनी महान उपलब्धियों के बावजूद पहली बार और 10 साल बाद दूसरी बार भी, जब पहले से बड़े पैमाने पर संघर्ष छेड़ा गया, आंदोलन को सफलता नहीं मिली। इस अंतर विरोध के कारण स्वराज की प्राप्ति भी नहीं हो सकी, जबकि नेताओं ने जनता से वादा किया था कि नई नीति अर्थात सत्याग्रह करने पर स्वराज की प्राप्ति शीघ्रतापूर्वक हो सकेगी।